कीर्तन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, टेंपल काउंसलिंग बोर्ड जो होता है मैनेजमेंट काउंसलिंग उसके मेंबर रहे हैं, और वे गौरचंद्र पब्लिकेशन है उसके मेन पब्लिक पब्लिशर और एडिटर है, और इन्होंने कई किताबें लिखी है, करीबन 25 किताब इन्होंने लिखी है, और उसमें से बहुत किताब बहुत फेमस है, और वैष्णव गीतावली एक अगर पुस्तक लेके आए प्रभु जी तो हम बता सकते हैं, प्रभु जी की पुस्तक है हमारे पास। और अवतारी देश में से कुछ भक्त लोग जब गए थे यात्रा पे वृंदावन में, तो प्रभु जी उनके धाम गाइड थे, तो प्रभु जी धाम गाइड के रूप में धाम में सेवा करते हैं और कई भक्तों को धाम लेके जाते हैं, उनको धाम के बारे में भगवान के बारे में बताते हैं। और महाराज के बोलने पे अभी वो प्रीचिंग के लिए निकले हैं पूरे संसार भर में, तो भारत में और कई अन्य जगहों पे अभी प्रचार के लिए जाते हैं। वे फरीदाबाद मंदिर में सेटल्ड है, और वहाँ का मंदिर जो अभी नया मंदिर बन रहा है, मतलब जो है उसको वहाँ का कांग्रीगेशन डेवलप करने के लिए प्रभु जी काफी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आप यहाँ पर पधारे हैं, तो हम इनका विशेष स्वागत करेंगे 3 बार बड़े प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र कह के।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सुनो चैतन्य प्रभु से निवेदन करते हैं कि आप उनको हार पहनाएं। हरे कृष्णा।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जनावल्लभ
जनवल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी,
यशोद नंदन व्रज जन रंजन,
I'm not afraid of the dark.
సమవేద్ గౌర భక్త వృందకి నిదాయ గౌర ప్రేమానంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమాం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసాం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాందర్శ జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురుమిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపరాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగర జాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదా సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం శ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. భక్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి ఋషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ.
తో అజం श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम बहुत ही प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गौड़ीय वैष्णव समाज में। तो श्रीमद् भागवतम भगवान के एक विशेष चीजों का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् यत् सद्य विमोचेत यत् विभेति स्वयं भयम्। तो आपन्नः संस्कृतिम घोराम, तो शास्त्र कहते हैं विशेष रूप से भागवतम के हर एक जो व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत में संस्कृतिम, ये भौतिक जगत जो दुखों का महासागर है उसमें आशा लिए बैठा है, वो होप की एक रेज या किरण देख रहा है लाइफ में, और वो क्या है, सुख की अनुभूति करना। तो भागवतम कहता है कि इस संसार में जो जीव भौतिक जगत में सुख की अपने जीवन में एक किरण देखता है, किरण चाहता है, और सदैव इस भौतिक जगत में जीवित रहते हुए भी भय से भयभीत रहता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि जिसके पास भय नहीं है। जैसे शास्त्र कहते हैं रूपे जराया भयम, जिसके पास ब्यूटी है, सुंदरता है, वो भयभीत रहता है कि बुढ़ापा मुझे आलिंगन ना करे, बुढ़ापे से दूर रहना चाहता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत के प्रभाव में भय के जीवन, भय का जीवन यापन कर रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है कि ये जो फियर पर्सोनिफाइड है वो भी एक चीज से हमेशा डरता रहता है, उसको भी डर है। वो कि किसका डर है, उसे यद भी भेति स्वयं विभो, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के जो पवित्र नाम है उनका उच्चारण करता है तो एक तो वो स्वयं भय से मुक्त हो जाता है, और दूसरा जिन चीजों से वो भयभीत होता है वो चीजें भी भगवान नाम से भयभीत हो जाती हैं, वो भी भगवान के पवित्र नाम से डरती है या भगवान से डरती हैं। इसलिए भागवतम हमें निडर बनाने के लिए है। भागवतम किसके लिए है, हम फियरलेस होना चाहते हैं लाइफ में, तो हम कैसे फियरलेस हो सकते हैं, जब तक हम श्रीमद् भागवतम का शेल्टर ना ले। तो इसलिए भागवतम के शुरुआत में, मध्य में और अंत में एक ही चीज का वर्णन बारंबार दिया गया है, क्योंकि कलयुग के जो जीव हैं उनको रिपीटेडली किसी चीज बोली नहीं जाती तो उनके समझ में नहीं आता। इसलिए भागवतम बारंबार हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि भागवतम का जो सार है, भागवतम पूरा शुकदेव गोस्वामी के मुख से राजा परीक्षित ने सुना। परीक्षित महाराज इतने फियरलेस क्यों थे, परीक्षित महाराज की लाइफ में जब एक कष्ट आया कि एक श्रृंगी ऋषि के द्वारा उन्हें शाप प्राप्त हुआ तो वो भयभीत नहीं हुए, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने एक चीज का शेल्टर ग्रहण किया था, और वो किसका शेल्टर ग्रहण किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज के जीवन से हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज कृष्ण के बहुत अधिक प्रिय डिवोटी थे, जिनके लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और उनका प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने भगवान को जब उत्तरा के अपने माता के गर्भ में भगवान को देखा, कि जिन्होंने गदा हाथ में लिए थे और भगवान उनके इर्द गिर्द राउंड मारकर उनकी रक्षा कर रहे थे, तो परीक्षित माँ के गर्भ में थे तो आईज उनकी बड़ी हो गई, अरे ये कौन है जिन्होंने गदा हाथ में लिए है, मुकुट धारण किया है, पीताम्बर उन्होंने पहना है, जो मेरे रक्षा करने के लिए आया है। तो जैसे माता के गर्भ से बाहर आते हैं तब लाइफ में एक ही चीज तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, हम भी सर्च कर रहे हैं अपने लाइफ में सुख को भाई आनंद को सर्च कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज किसे सर्च कर रहे थे? उस व्यक्ति को जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। जब वो बाहर आए तो जिसे भी देखते थे और कहते थे, सोचते थे, अरे ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। तो एक बार भीष्मा जानते थे कि किसने रक्षा की है, कृष्णा। तो जब राजसूय यज्ञ हस्तिनापुर में अरेंज किया था तो उसमें सारे अलग अलग राजा वहां उपस्थित हो गए थे और भगवान कृष्ण भी द्वारका से आ गए थे। हाँ, कृष्ण को अत्यधिक आनंद होता है जब वो अपने भक्तों के पास अधिक समय बिताते हैं। कहाँ समय बिताना चाहते हैं कृष्ण? डिवोटीज के एसोसिएशन में। इसलिए तो कृष्ण को नारद जी पूछते हैं कि हे कृष्णा, मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूं और कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ निवास करते हैं। तो नारद कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई सारे कुरियर्स भेजने होते भगवान के पास, हाँ, तो भगवान को पूछते कि आपका एड्रेस चाहिए, परमानेंट एड्रेस बताइए। तो कृष्ण क्या कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, सीधा हम वैकुंठ जाना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण वैकुंठ में नहीं है। वो कहते नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु, जो योगी बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के लिए एकांत हिमालय आजादी में निवास कर रहे हैं, आंखों को बंद करके नाक के अग्र भाग में ध्यान लगाकर मुझे अपने हृदय में बांधना चाहते हैं, हे नारदा, मैं उनके हृदय में भी निवास नहीं करता हूं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वहां। तो कहां रहते हो आप? एक ही इजी वे वो बताते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां जहां मेरे डिवोटीज एक साथ आते हैं और मेरे पवित्र नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे लीला और मेरे धाम की चर्चा करते हैं, अर्जुन में व्यवहार क्या करता हूं, निवास करता हूं। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, हाँ, कि जय स्थाने वैष्णव गान सही स्थान वृंदावन। हम वृंदावन को जाना चाहते हैं, लेकिन वृंदावन कहां है? डिवोटीज के एसोसिएशन में, भक्तों के संगति में है। इसलिए कृष्ण भी अकेले रहने में उनको कोई आनंद नहीं है, भगवान भी दौड़ते हैं अपने डिवोटीज के एसोसिएशन में वो रहना चाहते हैं। इसलिए नारद को कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त गान करते हैं, मेरे बारे में श्रवण करते हैं, मेरे बारे में कीर्तन करते हैं, तो वहां मैं उपस्थित होता हूं, वहां मैं विजिबल हूं, वहां मुझे देखा जा सकता है। इवन हम नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे महान आचार्य थे, उनके प्रकट होने से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक ऐसा आचार्य प्रकट होने वाला है इस बंगाल में कि जो जब कीर्तन करेगा कृष्ण के नामों का तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे, पत्थर ही नहीं ऊड भी पिघलने लगेगा। और वो कौन आए आगे चलकर? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत श्रील प्रभुपाद ने हमें एक गीत डेली चांट करने के लिए दिया, और वो कौन सा है? श्री गुरु चरण पद्मः, जो गुरु वंदना हम चांट करते हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ने जब पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया खेतुरी ग्राम में, तो वहां श्रीनिवास आचार्य आदि जो बहुत सारे डिवोटीज आए थे, उन सब ने रिक्वेस्ट किया कि ओ नरोत्तम दास ठाकुर, आप कीर्तन करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत हम्बल थे, उन्होंने कहा, मेरे हृदय में कृष्ण के लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन डिवोटीज ने उनको इस प्रकार से सर्व करने के लिए कहा था। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर बैठते हैं कई सारे कीर्तनिया डिवोटीज के साथ, जैसे कीर्तन चांट करते हैं सारे हजारों हजारों भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वहां कीर्तन के बीच में जब ये सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, तो उनके बीच में ही पंच तत्व प्रकट हो जाते हैं। कौन प्रकट हो जाते हैं? पंच तत्व, बल्कि वो सारे अप्रकट हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो गए थे, गदाधर पंडित श्रीनिवास आचार्य और जो प्रोमिनेंट डिवोटीज थे वो सारे अप्रकट हुए थे, लेकिन जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने चान किया वैसे ही पंच तत्व को भी वहां प्रकट होना पड़ा और उदंड कीर्तन हुआ, नाचने लगे, गाने लगे और फिर अचानक हाँ वो सारे अप्रकट हो जाते हैं, फिर डिवोटीज उनके सेपरेशन में या विरह में रोने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों के संगति में जाने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए कृष्णा द्वारका को बारंबार छोड़ते थे, हाँ कहाँ आना चाह रहे थे, पांडवास की ओर, जहां पांडवों ने राजस्वी यज्ञ अरेंज किया था और वहां उस राजस्वी यज्ञ में ये परीक्षित भी थे। उन्होंने कहा परीक्षित तो ढूंढ रहे थे एक व्यक्ति को, है ना, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो पर्सन जिनको मैंने माता के गर्भ में देखा था। तो भीष्म कृष्ण को कहते हैं कि आप क्या करो, दिखाई दो ना इनको, बताओ हाँ कि कौन हो, आप ही हो, क्योंकि कृष्णा तो टू हैंडेड फॉर्म है उनका, लेकिन उन्होंने कौन सा फॉर्म देखा था, 400 फॉर्म, जहां उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किया था, प्रमुख रूप से गदा। तो भगवान हाँ क्या करते हैं, जब परीक्षित ढूंढ ही रहा था तो भीष्म ने जैसे कहा तो अपना जो 400 फॉर्म है वो केवल किसको दिखाते हैं, परीक्षित महाराज को। परीक्षित देखकर समझ जाते हैं, कहते मैंने देखा, क्या कहा उन्होंने, मैंने देखा। हाँ उनका जो उनकी जो तलाश थी, उनकी जो उनका जो सर्च था वो अभी एंड हो गया था। तो इस प्रकार से हम भी किसी चीज की सर्च कर रहे हैं, किसी चीज की तलाश में हैं, और वास्तव में हम सब लोग किसी ना किसी प्रकार से अपने लाइफ में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, और कृष्ण को बहुत सरलता से अपने नजदीक प्राप्त करना है। हाँ तो उसके लिए क्या करना होगा, भागवतम की जो शिक्षा है उसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता हमें संबंध ज्ञान प्रदर्शित करती है और भगवत गीता जहां एंड होती है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रजन, कि हे अर्जुन सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और माम एकम मेरी एकमात्र शरणम रजन, हाँ मेरी शरण में आ जाओ, हाँ तुम डरो मत। तो हमें हमेशा डर है, कृष्ण जानते थे कि ये लोग मेरे शरण में आएंगे फिर भी डरते रहेंगे। हाँ निडर होने के लिए जहां वो एंड हो गई भगवत गीता, उसके आगे कृष्ण भागवतम प्रदान करते हैं। इसलिए है श्रीमद् भागवतम क्या है, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञाना दिवी सहा, जब द्वापर के अंत में कृष्ण अपने धाम में चले जाते हैं तो कृष्ण जाने के बाद एक चीज छोड़कर जाते हैं, हर अवतार हर इनकार्नेशन जब आता है या हर प्रोमिनेंट आचार्य अपीयर होता है इस भौतिक जगत में, तो अपने जाने के बाद बहुत वैल्यूएबल चीजें वो छोड़कर जाते हैं। और हमारा ड्यूटी क्या है, उस चीज को समझना कि क्या छोड़ के गए हैं और उस चीज को अपने लाइफ में पकड़ना। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता छोड़कर जाते हैं और दूसरी चीज भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जब इस जगत से अप्रकट हो गए धर्म ज्ञान आदि को लेकर, तो वो श्रीमद् भागवतम के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो चैतन्य महाप्रभु क्या देकर हमें गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भागवतम की शुरुआत में ही यह श्लोक आता है जहां भागवतम कहता है कि हर एक व्यक्ति को भगवान के जो पवित्र नाम है उनका शेल्टर ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान को पकड़ना मीन्स कृष्ण के नामों को क्या करना, रिजिडली बहुत तीव्रता से पकड़ कर रखना, कृष्ण के नामों को भगवत नाम को अपने लाइफ से छोड़ना नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में लीलाएं प्रकट कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित के रूप में थे तो एक दिन वो चांद कर रहे थे गोपी 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 गोपी, तो कुछ उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा निमाय को क्या हो गया, पागल हो गया है, कृष्ण नाम लेना चाहिए, गोपी गोपी क्या कर रहा है। बल्कि वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के नामों का उच्चारण करते हैं। जिस मात्रा में, जिस अनुपात में हम डिवोटीज कृष्ण के नामों को चांट करते हैं, वो उसी को रेसिप्रोकेट करते हैं कृष्ण अपने भक्तों के नामों का उच्चारण करके। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वो भी अपने पास माला कैसे काउंट करते थे, किसके नामों को, गायों के नामों को। कृष्णा काउज जो उनके डिवोटीज हैं उनके नामों को वो उच्चारण करते थे और उनको काउंट करते थे कितनी काउज काउज है, कितने ग्रुप्स है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे तो गोपी गोपी कहने लगे, तो वो जो स्टूडेंट था वो कुछ इस प्रकार से बोलने लगा, तो चैतन्य निमाय उठे, डंडा हाथ में लेकर दौड़ पड़े उसके पीछे, पागल कहेगा हाँ मुझे सिखाता है, उनको मारने के लिए भागे। तो वो स्टूडेंट अपना जीव बचाने के लिए, जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। हाँ, कैसे तो दूर गया, तो आगे गैदरिंग था स्टूडेंट्स का। उन्होंने कहा आप जानते हो ये निमाय पंडित आपने आपको समझता क्या है, ब्राह्मण का बेटा होकर हमारे ऊपर हाथ उठाता है। तो उन सबने कहा इसकी अभी खैरियत नहीं है, हाँ इसको हम सब दंडित करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हाँ तो परमात्मा रूप में सारे जीवों के हृदय में है, हम क्या डिजायर करने वाले हैं उससे भी वो ज्ञात है, इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहा जाता। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो जीव है, मुझसे ईर्ष्या करके, मेरा अनादर करके अपना हित नहीं साध सकते, इसलिए मुझे क्या करना होगा, इनका हित करने के लिए कुछ करना होगा। चैतन्य महाप्रभु अब उन जीवों, सारे जीवों को हित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया सोची, ट्रांसेंडेंटल चीटिंग जिसे कहते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं इन जीव जो जो मुझे डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं हाँ, तो उनका उद्धार करने के लिए मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा, सन्यास। तो सन्यास लूंगा तो नेचुरली सन्यासी को हर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है। लॉर्ड चैतन्य ने कहा कि मुझे इवन प्रणाम करने मात्र से ये जीव भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं, केवल मुझे प्रणाम करने मात्र से। और वास्तव में हम कई बार सोचते हैं प्रणाम कोई लाइट चीज नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सब को कुछ एक डिसाइपल के पास गुरु को या कृष्ण को ऑफर करने के लिए कुछ है तो ये क्या है उसके पास, प्रणाम, हम्बल ऑबिसेंसेस, कैसे विनम्रता की भावना से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बारिश के दिनों में कहां से आ रहे थे अचानक और अपने मठ के अंदर घुस रहे थे डोर से, मेन गेट से। तो वहां एक गृहस्थ डिवोटी अपने पत्नी के साथ दूर से आ रहे थे, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को देखा और देखने मात्र से क्या किया, जहां भी स्पिरिचुअल मास्टर को देखा जाता है शिष्य को क्या करना चाहिए, वाह ही प्रणाम होना करना चाहिए, दंडवत, उसको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब है कि फुल्ली सरेंडर को हम प्रकट कर रहे हैं। तो उन्होंने जब, और बारिश तेजी से हो रही थी, कीचड़ हो गया था, तो उस डिवोटी ने उसी कीचड़ में प्रणाम किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा अरे मुझे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है इतने सारे कीचड़ आदि में। उन्होंने क्या कहा उस डिवोटी ने, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव मेरे पास कुछ नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, एक ही धन है और वो क्या है, ये प्रणाम, प्लीज आप इसको स्वीकार कीजिए, इससे मेरा हित या मेरा उद्धार हो सकता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके इस एक्शन से अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे थे कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा तो ये सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, इससे उनका हित हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय है। श्रील रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को सर्वप्रथम मिले इलाहाबाद में, तो वहां वो अपने भाई अनुपम या श्री वल्लभ के साथ थे, तो उन्होंने देखने मात्र से उनको प्रणाम किया और एक प्रणाम मंत्र रिसाइट किया। कौन सा था वो, नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विशेष नमः। तो उन्होंने कहा कि नमो महावदान्याय, कि हे चैतन्य देव आप सबसे अधिक दया दयालु या सबसे अधिक वदान्याय हो। वदान्याय मतलब जो देने वाला है, डोनर, सबसे बड़े क्या हो आप, बेस्ट डोनर हो। तो कोई महाप्रभु कहेंगे अरे रूप गोस्वामी ये क्या बोल रहे हो, मैं तो एक सन्यासी हूं और सन्यासी के पास देने के लिए कुछ धन नहीं है और आप मुझे कह रहे हो सबसे बड़े डोनर हो। कहते नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु कहते हैं कि सन्यासी के पास तो उसका अपना कमंडल होता है, जल पात्र, आजकल वाटर बोतल रखते हम, और दूसरा क्या होता है, डंडा होता है, वो भी अभी फोल्ड करके ले जाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा यही मेरा संपत्ति है, यही मेरा वेल्थ है, एक कमंडलो और एक डंडा। तो रूप गोस्वामी कहते नहीं, आप क्या दे रहे हो, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं दे रहे हो, इस संसार में सर्वाधिक रेयर, सबसे रेयर वस्तु आप सारे जीवों को दे रहे हो। चैतन्य महाप्रभु का ये तो क्वालिटी था, महाप्रभु किसी बिना भेदभाव के हरेक को कृष्ण भक्ति का दान कर रहे थे। वो किसी को ये नहीं सोच रहे थे कि पात्रा पात्र विचार नाहे नाहे स्थाना स्थान। चैतन्य महाप्रभु नहीं देख रहे थे कि ये क्वालिफाइड है, पात्र है, अपात्र है, अनक्वालिफाइड है, हरेक को कृष्ण भक्ति वो प्रदान कर रहे थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, रूप गोस्वामी कहते हैं उनको कि आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हो और कौन हो, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जिसका प्रेम है वो वही बांट सकता है। हाँ, तो कृष्ण का प्रेम कृष्ण प्रदान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर, ऐसे चैतन्य देव को मेरा क्या है, प्रणाम है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी उनको कहते कि सर्वोत्तम वस्तु, सबसे रेयर चीज कृष्ण इस जगत में देना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में अवतरित होते तो कुछ अपने साथ लेकर आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा गोलो केर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम धन को लेके आए अपने साथ, कहां से लेके आए हैं, गोलोक वृंदावन से। इंडिया में हर कोई व्यक्ति मेड इन जापान या मेड इन समथिंग कुछ ना कुछ यूज करना चाहते हैं, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु मेड इन गोलोक वृंदावन, उन्होंने सोचा ये लोग हमेशा मेड इन में सोचते रहते हैं, तो इनके लिए हमें यहाँ की वस्तु लाके दूंगा तो स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपने साथ कुछ लेके आए कृष्ण प्रेम धन, और उस प्रेम धन को उन्होंने बांट दिया, हर जीवों को उन्होंने प्रदान किया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना होगा, तो दूसरों के हित के लिए जीवित रहना, यही डिवोटीज के 26 क्वालिटीज है, उसमें से एक क्वालिटी क्या है, सर्व उपकार कहा, कि डिवोटी जो व्यक्ति है महान डिवोटी है उसका एक गुण है कि वो दूसरों के हित के लिए जीवित रहता है, अपने हित की उसे चिंता नहीं है, वो दूसरों के लिए हमेशा कार्यरत होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे सन्यास ग्रहण करना चाहिए, और उन्होंने ये किसी को रिवील नहीं किया। जब नवदीप में उन्होंने 5 डिवोटीज को बोला कि मैं सन्यास ग्रहण करने वाला हूं, और फिर जब सची माता और उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया, उनको पता नहीं चला, कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि हमारे विष्णुप्रिया ने सोचा मेरे पति सन्यास लेने वाले हैं, अभी अभी उनका विवाह हुआ था, और सची माता जो अकेले ही थे, जगन्नाथ मिश्र भी अप्रकट हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अनाथ हो जाऊंगी, एक प्रकार से अकेली हो जाऊंगी यदि चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित सन्यास ग्रहण करेंगे। तो एक दिन दूसरे दिन महाप्रभु नवद्वीप को छोड़कर चले जाने वाले थे, तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु अपने घर में सुबह उठते हैं और एक स्थान में बैठते हैं, तो पूरे नवद्वीप के लोग, हर डिवोटी उस दिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बाढ़ आ रही हो, और हर एक व्यक्ति खाली हाथ नहीं आ रहा था, अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट्स चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए जा रहा था गार्लैंड से कुछ ना कुछ, तो वो पूरी रात हो गई। जब लेट इवनिंग हो गई तो एक डिवोटी आता है और वो कौन थे, खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर भौतिक रूप से देखा जाए तो अत्यधिक निर्धन थे, सबसे निर्धन पुअर व्यक्ति नवदीप का कोई था तो खोला बेचा श्रीधर थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक प्रिय थे। क्यों अधिक प्रिय थे? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में अपना कुछ धन बना लिया था। तो वो धन क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, नाम सम वस्तुना ए भव संसारे। कहते हैं कि कृष्णा के स्टोर हाउस में, वैकुंठा में या वृंदावन में, उनके ट्रेजर हाउस या ट्रेजरी में कुछ मूल्यवान चीज भगवान रखते हैं तो वो क्या है? अपना नाम। कृष्णा अपने तिजोरी में वहां कुछ चीजें रखते हैं तो एक ही वस्तु रखते हैं, वो क्या है? कृष्ण नाम। और जब आते हैं इस संसार में तो उसको खोल देते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, और अपने साथ में उसको लेकर इस संसार में अवतरित होते हैं। इसलिए कहते हैं नाम सम वस्तु नाय ए भव संसारे। भगवान के नामों के से श्रेष्ठ इस भौतिक जगत में वस्तु अवेलेबल नहीं है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, नाम बिना किछु नाहिक आर 14 भुवन माजे। भगवान का जो पवित्र नाम है इसके बिना त्रिभुवन में सबसे मूल्यवान और लेने योग्य वस्तु कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो कोला विचर श्रीधर जो डिवोटी थे वो बहुत गरीब भी थे, लेकिन वो अपने कुटिया में रह रहे थे जो घास की कुटिया थी, इसमें छेद ही छेद थे, एक ही धोती उनके पास था, 17 छेद थे, एक ही पॉट घर में था लोहे का पात्र, उसी को यूज करते थे। लेकिन एक चीज में कमी नहीं थी उनके जीवन में, क्या था? कृष्ण स्मरण। तो डिवोटी का मतलब है कि जिसके लाइफ में कृष्ण का स्मरण अत्यधिक है वो उतना ही उन्नत भक्त है। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा? कीर्तनीय सदा। जब महात्माओं के लक्षणों का सिम्टम्स का वर्णन कृष्ण गीता में करते हैं कि कौन महात्मा है, दैवी प्रकृति आश्रिता, जिसने स्पिरिचुअल जो भगवान की प्रकृति है उसका शेल्टर ग्रहण किया है, फिर उसके लक्षणों को कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़व्रता। सतत कृष्ण की कीर्तन नामों का कीर्तन करता है और उनकी सेवा में सदैव दृढ़ रहता है, फिक्स रहता है, और मेरे भजन में नित्य रूप से लगा रहता है मेरी सेवा में। तो भगवान इस प्रकार से भक्तों के या महात्मा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो यह है जो खोला बेचा श्रीधर जिनके पास भौतिक रूप से निर्धन थे लेकिन कृष्ण का स्मरण अत्यधिक था। तो आत्मा के लिए मृत्यु क्या है? गीता में कृष्ण तो कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, या फिर कहते न जायते न म्रियते वा कदाचित, इसको सुखाया जलाया नहीं जा सकता, ये मृत्यु नहीं है। लेकिन आत्मा के लिए मृत्यु है। क्या है वो मृत्यु? कृष्ण को भूलना, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण का विस्मरण होना, ये आत्मा के लिए डेथ है। और आत्मा के लिए लाइफ क्या है? कृष्ण का स्मरण, अत्यधिक स्मरण। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतुकित्वे, मुझे जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन आपकी अहेतु की भक्ति सदैव मेरे हृदय में बनी रहे। भक्तिनाथ ठाकुर ने भी यही कहा, मुझे इंद्र का इतना बड़ा पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे तो कीड़ा भी बनना पड़े इस संसार में, लेकिन कहां बना दो कीड़ा? एक डिवोटी के घर में, उसके नाली जहां सारा वेस्टेज बाहर निकलता है और वो जो महाप्रसाद आदि भक्त लोग खाते हैं वो मुझे खाने का मौका मिले, उससे मेरा कृष्ण स्मरण बढ़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कि ये जो कोला बेचा श्रीधर है पूरे रात्रि में कृष्ण कीर्तन कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे अकेले। और जब वो उच्चारण करते थे तो बाहर के लोग सोचते थे कि ये भूखा है, इसको कुछ खाने के लिए नहीं है, भूख के कारण रात को नींद नहीं आ रही है, इसलिए क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अच्छा है, भूख भी लगे तो क्या खाओ, कृष्ण प्रसाद। तो जब ये कोलावेचर श्रीधर चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए तो मैंने सोचा क्या ले जाऊं मैं, डिवोटी को या फिर गुरु या डीटीज के पास हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्यों ले जाना चाहिए, क्योंकि उससे लविंग एक्सचेंज डीटीज के साथ, गुरु के साथ, डिवोटीज के साथ हम एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, आदान प्रदान। और ऐसे आदान प्रदान से भगवान के प्रति अटैचमेंट की वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए कोलावेचर श्रीधर ने कहा क्या ले जाओ क्या ले जाओ, तो उनकी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ी जहां एक लता निकली थी और उसके ऊपर एक पंपकिन था, कद्दू पंपकिन था। उसको उन्होंने लिया और कहां गए दौड़कर, चैतन्य महाप्रभु के पास। और जब वो गए तो चैतन्य महाप्रभु अकेले घर में थे, उनकी माता सची माता और उनके साथ विष्णु प्रिया वो थे। तो ये लेके गए तो चैतन्य महाप्रभु ने, अब सोचो कोई हमें मिलने आ रहा है और कद्दू लेके आए पंपकिन, प्रभु जी आपके लिए बहुत बड़े गिफ्ट है और बहुत मूल्यवान है, प्लीज टेक दिस। कहेंगे क्या क्या हो गया हम उसको लेंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु ले ले उस पंपकिन को। और उसी क्षण दूसरा डिवोटी भी पहुंचा, ये दो आखिरी डिवोटी थे। दूसरा डिवोटी आया था मिल्क लेकर, प्योर काओ मिल्क, तो दूध लेकर आया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कुक दिस, इसको कुक करो। तो विष्णुप्रिया बनाती है अमेजिंग एक स्वीट पंपकिन और मिल्क को। चैतन्य महाप्रभु आखिरी कुछ ग्रहण करते हैं नवद्वीप में, आखिरी चीज उन्होंने खाई, हाँ, तो ये उनके डिवोटी ने जो दीव थी प्रेम से गिफ्ट, हाँ, उससे जो बना था व्यंजन, हाँ, रेसिपी, उसको उन्होंने ग्रहण किया। और फिर संध्या के समय में चैतन्य महाप्रभु लेट जाते हैं, विश्राम करते हैं निमाय पंडित के रूप में। और वहां विष्णु प्रिया को सबसे अधिक टेंशन था, क्या था, सबसे अधिक टेंस में थी, स्ट्रेस क्या था कि मेरे पति संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, क्या ग्रहण करने वाले हैं, ये भी एक भय है, क्या है भय। जैसे मैं कल भी शाम को उस प्रोग्राम में कह रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते हैं कि परिवार में जब पति भगवान की भक्ति में जुड़ता है, हरे कृष्ण जाने लगता है, जप करने लगता है, तो घर में सबसे अधिक टेंस कोई किसी को होता है तो वो कौन है, वाइफ, पत्नी को। उसको लगता है कि अभी तो ये माला हाथ में है, उसके बाद और क्या क्या हाथ में आएगा और बाकी चीजें दूर चली जाएगी, हाँ, तो इस प्रकार से वो टेंस में, टेंशन में रहती है। तो वो सोचते कि मुझसे बाहर ना जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर है, पत्नी क्या है, होम मिनिस्टर, तो मिनिस्ट्री उनके अंडर है घर की। तो उनको लगता है कि बाहर ना जाए, हाँ, मेरे मुझसे दूर ना हो जाए, तो वो भयभीत रहती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ऐसे एक परिवार था जहां एक पति पत्नी निवास कर रहे थे और वो जो प्रभु जी है वो बहुत डिवोटी थे और वो भक्तों की सेवा के लिए सदैव अवेलेबल रहा करते थे और दौड़ते थे सर्विसेस में। पत्नी को लगता था इस हमेशा भागते रहते हैं, हमेशा भक्तों की सेवा करते रहते हैं, कैसे क्या डालो मैं, दरार बिग वॉल खड़ी कर दो, दीवार, कुछ ना कुछ करो जिससे भक्तों से वो अलग हो जाए, क्योंकि भक्तों की संगति से अलग हो जाते हैं तो हम चाहे जितने बड़े क्यों ना हो हम क्या हो जाते हैं, छोटे बन जाते, वीक हो जाते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि कृष्णा आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो दो चीजें प्रोवाइड करो, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष। आप मुझे कुछ दो चीजें देना चाहते हो तो फर्स्ट चीज है तांदेरा चरण सेवी। तांदेरा मीन्स जो भगवान के महान भक्त हैं या पूर्ववर्ती जो आचार्य गण हैं, उनकी सेवा में मुझे क्या करो लगाओ, उनकी सर्विस करने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करो। और दूसरी चीज क्या दे दो, भक्त सने वास, मुझे तो भक्तों की संगति में
निवास करने का मौका प्रदान करो। तो वैसे ही उस स्त्री को लगा कि नहीं, इनको दूर कर देती हूँ। तो एक दिन अचानक कोई साधु लोग घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उनके घर में गए। घर में जब गए तो प्रभु जी तो ऑफिस चले गए थे, घर में माता जी थे। माता जी ने सोचा ये कहां से आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कैसे इनको भगाओ, क्योंकि प्रभु जी घर में आएंगे तो इनको वन नाइट स्टे कंफर्म है, फिर सारी चीजें किसको झेलनी पड़ेगी, मुझे करना पड़ेगा, तो कैसे इनको भगाओ। तो एक योजना, ददामि बुद्धि योगम, उसको भी बुद्धि प्राप्त हो रही थी। और क्या करती है, वो अपने किचन में जाती है, किचन में जाकर एक चिमटा उठाती है, जो चपाती बनाने के लिए होता है ना, क्या कहते हैं उसको, चिमटा है, तो उसको लेती है। साधु बैठे थे अपने सोफा सेट में, बिठाया था उनको, और उनको दिखाई दे उनके सामने वाला जो सोफा सेट था, उसके कवर को उठाती है, उसके नीचे रखती है चिमटा। तो एक प्रभु जी कहते हो माता जी क्या कर रहे हो, ये चिमटा क्यों छुपा रही हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रभु जी है ना ऑफिस गए हैं, और अभी आने का समय ही हो गया है उनका। वो आते ही वो साधुओं को जैसे ही देखते हैं तुरंत किचन में चले जाते हैं। भक्तों को लगा कि शायद प्रसाद कुक करने के लिए जाते होंगे। तो माता जी कहती है कि वो कुकिंग करने नहीं जाते, चिमटा ढूंढ लेते हैं और गैस ऑन करके उसको पूरा लाल करते हैं और साधुओं का नाक पकड़ते हैं। किसने कहा, उस माता जी ने। अभी ये जो बेचारे सिंपल डिवोटीज बैठे थे, उन्होंने सोचा कहां यहां आ गए हम, भागते यहां से। तो उन्होंने कहा माता जी थैंक यू वेरी मच, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हो गए हैं, हमारी नाक बचनी चाहिए। नाक में कितना सौंदर्य छुपा हुआ है। तो वो भागते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे रोड से जाते हैं, तब तक ही प्रभु जी अपनी कार लेके पधारी गए थे। आके उन्होंने पूछा, दूर से देखा साधु जा रहे हैं, डिवोटी जा रहे हैं, उन्होंने कुछ पूछा कि क्या क्या हुआ, ये क्यों लोग चले गए, तेजी से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो आए और जो चीजें नहीं मांगनी उन चीजों को मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ये चिमटा चाहिए हमें, तो मैंने वो चिमटा कहां छुपा दिया था, उसने दिखाया, देखिए मैंने यहां छुपाया। तो उन्होंने कहा कि छोटी सी चीज तुमसे मांगी है भक्तों ने, चिमटा क्या, हम कई सारे चिमटे खरीद सकता हूं तुम्हारे लिए, एक चिमटा देने के लिए क्या है। तो उनका हृदय तो बहुत बड़ा था, जैसे रामानुजाचार्य के एक डिसाइपल थे हेमांग और धनुर्दास। तो हेमांग जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में थे, जिनको यतिराज कहा जाता है, तो ये हमेशा कावेरी में स्नान करते थे और निकलते थे डिवोटीज से मिलने के लिए, रंगनाथ का दर्शन करने। तो जब रामानुजाचार्य जा रहे थे तो उन्होंने एक प्रोसेशन देखा, और उस प्रोसेशन में क्या देखा उन्होंने, एक सुंदर युवती जा रही है और जिसके आगे एक युवक जा रहा है, पालकी जा रहा है भगवान का, सारे लोग नाच रहे गा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रेयर्स चांट कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट सीन उन्होंने देखा, एक युवक एक युवती को, सारे लोग यहां वॉक कर रहे हैं, वो लेडी भी वो युवती भी यहां वॉक कर रही है, लेकिन ये क्या है, इसकी बैक उस तरफ है और उसके उसका जो फेस था उस स्त्री के मुख को देख रहा है, और ऊपर एक छाता पकड़ा हुआ है, उसके आंखों में देखते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये क्या है, सारे लोग रंगनाथ की आंखों को देख रहे हैं, रंगनाथ के फेस को देख रहे हैं, इस प्रोसेशन में एक ही डिफरेंट एंटिटी है जो क्या कर रहा है, अम्ब्रेला पकड़ते हुए है, उस जो युवती है उसके मुख को देखते जा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य को भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है, उनसे बात करो, उनको बोलो हमारे जो आचार्य हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये जो गए और उनको कहा कि आचार्य जतिराज रामानुजाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो जो धनुर्दास थे वो आते रामानुजाचार्य के पास, वो कहते कि क्या देख रहे थे तुम अम्ब्रेला पकड़कर उस स्त्री को। तो उन्होंने कहा कि संसार में मैं सबसे सुंदर आके ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे सबसे सुंदर आंखें लाइफ में मिल गई है। रामानुजाचार्य ने कहा इससे भी अधिक सुंदर आईज मैं आपको दिखाऊं, तो उस आईज को छोड़ने के लिए तैयार हो? तो वो कहता यस, तो कहते कल सुबह आ जाओ, मैं इससे भी ब्यूटीफुल आईज आपको दिखाता हूं। तो सुबह वो आता है रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य उसे कहां ले जाते हैं? रंगनाथ के आल्टर में, मंगल आरती में। और वहां रंगनाथ जो भगवान लेटे हैं अनंत शयन पर, अनंत शेष पर, तो वहां जब उनको देखते हैं उनकी आईज को, तो ये जो धनुर्दास था वो रोने लगता है। उन्होंने कहा कि इस संसार में मैं इस सुंदर आंखों को देखने के लिए पागल हो गया था, लेकिन वास्तव में नेत्र किस लिए मिले हैं? कृष्णावलोकन बिना फल नाही आन। नेत्रों का असली फल क्या है, फ्रूट क्या है? कृष्ण का अवलोकन, कृष्ण को देखते रहना। तो रंगनाथ के आईज को देखा वो रोने लगे, और वो धनुर्दास महान भक्त बने। तो उन दोनों का विवाह हुआ जिस तरुणी को देख रहे थे, और एक आइडियल गृहस्थ बने। रामानुजाचार्य की सेवा में वो 100% सरेंडर थे, और रामानुजाचार्य के इतने प्रिय डिवोटी बने कि रामानुजाचार्य नून में जब कावेरी स्नान करते थे और वॉक करना होता था उनको, तो अपना जो हाथ है किसके कंधे में रखते थे? धनुर्दास के कंधे में, इतने क्लोज थे। तो जब बाकी जो उनके ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य थे रामानुजाचार्य के, उन्होंने सोचा गुरु महाराज तो गृहस्थ डिवोटी के कंधे में हाथ रखते, हमारा कंधा खाली है, उनसे इतना प्रेम करते हैं, हम क्या है? ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। तो रामानुजाचार्य को पता चला इनके अंदर फॉल्स ईगो बढ़ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करें? तो रामानुजाचार्य ने जब सारे ब्रह्मचारी सन्यासी सो गए थे, सबके धोती कुर्ता या फिर जो कॉपिन वगैरह है इसका उधर चेंज किया, यहां से वहां, वहां से यहां, सारा मिक्स कर दिया। सुबह सब उठे तो आपस में लड़ाई करने लगे, किस चीज के लिए? अपने छोटे से कपड़े के लिए। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि देखो इनकी ये रियलिटी है, तो उन्होंने अपने उन ब्रह्मचारी शिष्यों को कहा कि देखो जाओ वो जो धनुर्दास है उनके घर में जाकर क्या करो, चोरी करो। क्या करो? चोरी करो। तो वहां ये धनुर्दास तो गए थे बाहर, उनकी पत्नी रेस्ट कर रही थी नून में, सो रहे थे और विंडोज ओपन थी। तो दो ब्रह्मचारी कूद जाते अंदर, जंप लगा के पहुंच गए। माता जी तो स्नोरिंग कर रही होगी, ये आराम से लेटे थे। तो उन्होंने जो भी गोल्ड वगैरह इकट्ठा किया घर से, और देखा कि उस माता जी ने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हैं, कान में, नाक में, हाथ में, बाजू बंद, पाँव में, सब जगह पहने हुए हैं। तो एक ओर से ऐसे सो रहे थे तो ये डिवोटीज गए और एक ओर से निकालने लगे कान। अभी उसने पता चल गया था उसको डिवोटीज आए हैं, टेम्पल्स है, और शायद कुछ कमी होगी टेम्पल रन करने में, स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो वो एक ओर से निकाल रहे थे, निकाल लिए, और उसको लगा और वो थोड़ी सी हिल गए तो वो डर गए बेचारे, वहां से भाग के चले गए। और फिर जो भी धनुर्दास आता है और वो जैसे अंदर आते हैं और वो कहते कि क्या हुआ, तो वो माता जी उनकी जो वाइफ हेमाम वो कहती है कि टेम्पल से डिवोटीज आए थे, उन्होंने कहा क्या करने, चोरी करने आए थे, बहुत सारी चीजें ले गए और मेरे हाफ बॉडी के आभूषण भी वो ले गए, मुझे लगा इस ओर की भी देती हूँ, ये भी क्या करना है, थोड़ा समय करवट मैंने बदल ली ताकि इस ओर के भी ले जाए। तो उनको लगा कि ये जग गए हैं इसलिए वो भाग के चले गए। तो ये सब चीजें रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि विंडो में खड़े होकर सुनो कि उनकी क्या रिएक्शन है। तो राम ये जो धनुर्दास कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो वास्तव में रामानुजाचार्य की सेवा के लिए है। वो अपने पत्नी को डांटने लगे, तुम हिले ही क्यों, और सारे जाने देते आभूषण किसकी सेवा के लिए? रामानुजाचार्य की सेवा के लिए, उनकी सर्विस पूर्ति करने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु, जब महाप्रभु जब लेटे हुए थे तो उनकी जो पत्नी है वो बहुत अधिक चिंता में थी। तो वो महाप्रभु जब लेटे थे तो उनके चरणों के पास गई और उन्होंने उनके चरणों को अपने गोद में रखा और चरणों को मसाज कर रहे थे, दबा रहे थे, और दुख से उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रहे थे, और वो गरम गरम आंसू जब महाप्रभु के चरणों में लग रहे थे तो वो जग गए और उन्होंने कहा, हे विष्णुप्रिया क्यों रो रही हो? तो विष्णुप्रिया तो बहुत जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, रखा हाथ अपने सर के ऊपर, कहा, बताइए बताइए क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? उन्होंने कहा, नहीं मैं संन्यास ग्रहण नहीं करने वाला हूं। कहां से ये सब चीजें तुमने सुनी? हाँ तो भय हमेशा है। तो जब महाप्रभु फिर से सो गए, फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में विष्णुप्रिया को नींद नहीं थी, उन्होंने फिर से उनको जगाया और अपने उनका हाथ अपने सर पर रखा और कहा कि क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ विष्णुप्रिया मैं क्या ग्रहण करने वाला हूं, संन्यास स्वीकार करने वाला हूं, और तुम मेरी सहायता के लिए प्रकट हो गई है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बेड पर ही बड़ा सा लेक्चर दिया, भौतिक जगत क्या है, टेम्पररी रिलेशनशिप्स क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स की चर्चा की, और कंक्लूड करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विष्णुप्रिया तुम अपने आप को एकाकी मत समझो, जब मैं चला भी जाऊं संन्यास ग्रहण करके तो इस जगत में केवल दो ही चीजें है शाश्वत है, इटर्नल है, और बाकी सारी चीजें है टेम्पररी है, और दो ही चीजें हैं जिनका शेल्टर हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो विष्णुप्रिया ने पूछा, क्या है वो दो चीजें? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्णा के डिवोटीज, और दूसरा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण के जो भक्त हैं और उनका जो नाम है, ये दो ही चीजें हैं, ये दो ही चीजें हैं वास्तव में शाश्वत हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि इस संसार में किसी चीज का हमें आश्रय लेना है या शेल्टर ग्रहण करना है तो इन दो चीजों का, हमें दो चीजों की कामना सदैव अपने जीवन में करते रहना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि व्यक्ति को कौन सी चीजों का हमेशा स्मरण करना चाहिए लाइफ में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि हमें दो चीजों का सदैव स्मरण करना चाहिए, और वो दो चीजें क्या है? उन्होंने कहा सबसे पहले कृष्ण का जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण का जो पवित्र नाम है, और दूसरा है मृत्यु। क्या उन्होंने कहा? मृत्यु। एक तो भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, और दूसरा है जो मृत्यु है उसका स्मरण करना चाहिए। तो एक शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने पूछा कि क्यों, मैं हाथ में ले लू, मैं हाथ में लेता हूं, हरे कृष्णा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के उस शिष्य ने पूछा कि क्यों ये दो चीजें स्मरण करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्यों हरि नाम का हम निरंतर स्मरण करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का पवित्र नाम स्मरण करने से हमें मृत्यु का भय नहीं होता। हाँ, और दूसरा क्या है? जो मृत्यु है उसका हमेशा स्मरण करते हैं, याद रखते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में रफ्तार आ जाती है, इमरजेंसी हम महसूस करते हैं, और फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत गंभीरता से सीरियसली हम कर पाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने डिसाइपल्स को हमेशा शिक्षा, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो प्रदान करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भागवतम वास्तव में परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शुरुआत में, मध्य में और अंत में भगवान के नामों की शरण ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। भागवतम के बीच में अजामिल का वर्णन आता है, किस प्रकार से उन्होंने भगवत नाम की शरण ग्रहण की, और अंत में जब भागवतम श्रवण किया तो जो शुकदेव गोस्वामी है वो राजा परीक्षित को कहते हैं कले दोषोर निधि राजन अस्ति एका महत गुना, कि हे राजा परीक्षित, ये संसार तो दोषों से भरा पड़ा है, ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें फॉल्ट नहीं है। इसलिए चाणक्य पंडित भी सेम चीजें कहते, कश्य दोषे कुले नास्ति, कौन ऐसा, कौन सा ऐसा फैमिली है जिसमें दोष नहीं है, फॉल्ट नहीं है। व्याधिना कौन पीड़िता, कौन सा ऐसा व्यक्ति संसार में है जिसके पास बीमारियां नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। कश्य सौख्य निरंतरम, तीसरी चीज चाणक्य कहते हैं कश्य सौख्य निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति इस संसार में जो हमेशा 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 के लिए सुखी है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज भगवान की, उन्होंने उनके नाम आदि की शरण ग्रहण की थी, इसलिए वो निडर हो गए थे, उन्होंने तो इतना अपने सारे चीजों का त्याग किया और गंगा के तट पर जाकर निवास किया, उन्होंने बैठ गए और वह शुकदेव गोस्वामी और डिवोटी से कहा कि मुझे अभी किसी चीज का डर नहीं है, मुझे शाप तो मिला है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तक्षक सर्प से, जिसको पंख है उड़ने वाला सर्प, वो मुझे काटने आएगा, उससे भी मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन एक चीज आप डिवोटीज करो, क्या गायतः विष्णु गाथा, कि आप कृष्ण का गुणगान करिए, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को चांत करिए और मैं उसे क्या करूं, श्रवण करूं, हाँ, तो फिर मुझे इस संसार में किसी चीज का डर नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज आदि के जीवन से भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो भगवान के नामों की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना, एक क्वालिटी इस कलियुगा में है। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने जब कलियुगा को, कली को दंडित करने के लिए गए थे, पनिशमेंट देने के लिए, तो उन्होंने मारा नहीं, जान से नहीं मारा, उन्होंने क्या किया, उसको बचाए रखा और 4 स्थान प्रदान कर दिए, जहां ये मांस भक्षण है, नशा है, जुवा है, इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं, वहां कली निवास करता है। कली को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एक क्वालिटी उसमें है और उस क्वालिटी को कलियुगा के जीव यदि अपना लाइफ एंड सोल बनाते हैं तो उनका जीवन भी धन्य या ग्लोरियस हो सकता है। और वो क्या था, कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन। तो एक भक्त को सदैव यही सोचना चाहिए किस प्रकार से मैं अपने लाइफ में डिवोटीज के एसोसिएशन में कृष्ण के नामों का शेल्टर ग्रहण करूं। और यही चीज कृष्ण कहते हैं, भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वो कहते हैं कि अनन्य चेता सततम, हे अर्जुन, मैं बहुत सरल हूं, कोई भी व्यक्ति मुझे इजिली अटेन कर सकता है, लेकिन क्या करना होगा, मुझे उसे मेरा स्मरण करना होगा, लेकिन कैसे, अनन्य चेता, अनन्य चेता मीन्स बिना किसी मोटिव के, यही तो भगवत भक्ति है। सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि भगवत भक्ति क्या, ये परम धर्म है कृष्ण को सर्व करना, और कैसे सर्व करना, अहेतु की, बिना किसी मोटिव के, और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के, कंटिन्यूअसली कृष्ण को सर्व करना, यदि कोई व्यक्ति करता है इस प्रकार से तो व्यक्ति सुप्रसिद्धति, आध्यात्मिक आनंद को अनुभव या प्राप्त कर सकता है। वही चीज हम वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन वासी कौन है जिसकी ये भावना है, कृष्ण को वो केवल अनन्य भाव से सर्व करना चाहता है। ब्रजवासियों का मूड क्या है, वो अपने लिए जीवित नहीं है, उनका बोलना, उनका चलना, उनका एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना, उसका गोल क्या है, कृष्ण है, कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए तो कृष्ण बुक में हम वो पास टाइम पढ़ते हैं, एक फ्रूट सेलर लेडी थी, वो मथुरा में उसने सुना था कृष्ण के बारे में, कृष्ण के ब्यूटी के बारे में, कृष्ण के एक्टिविटीज के बारे में, कृष्ण बहुत छोटे थे, उसने सोचा मुझे जरूर वृंदावन जाना है, तो एक टोकरी लेती है, उसमें फ्रूट्स डालती है, यमुना को क्रॉस करती है, और जैसे जाती है तो निरंतर किसका स्मरण कर रही थी, वो कृष्ण का। तो रास्ते में ब्रज में वृंदावन में वो भ्रमण कर रही थी, वॉक कर रही थी और नंद महाराज के महल की ओर जा रहे थे यमुना के किनारे से, तो वो केवल एक ही चीजों का उच्चारण कर रहे थे। वो तो फ्रूट सेल करने के लिए आए थे, और वो कैसे सेल कर रहे थे, फ्रूट्स के नाम नहीं ले रहे थे कि एप्पल खरीदिए, केले खरीदिए, वो कह रहे थे कृष्णा ले लो, मधुसूदन ले लो, माधवा को ले लो, गोविंदा को ले लो, इस प्रकार से सारे कृष्ण के नामों का उच्चारण करते करते फाइनली वो नंद महाराज का जो महल था उसके गेट के सामने गई और वहां बैठ गई। बैठ के अपना टोकरा उठाया और सामने रखा और वो कृष्ण का स्मरण करने लगी, बोलने लगी। तो हमने शुरुआत में ही कहा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। अंदर सारे यशोदा आदि थे लेकिन कृष्ण का ध्यान कहा जा रहा था, कौन सा डिवोटी चांटिंग कर रहा है। हम चांटिंग कर रहे हैं, जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो कॉन्शियस होते कृष्णा, कौन कॉन्शियस होते हैं, हम कॉन्शियस नहीं है अपने जप में। हमें अपने लाइफ का सबसे स्ट्रगल आवर्स कुछ लगते हैं तो वो कौन से हैं, जब जपा का समय आता है रोंगटे खड़े हो जाते जप करने से पहले, आंसू निकलने लगते कि नो चांटिंग, ऐसी हमारी स्थिति है। तत्रा न अनुराग, तो चांटिंग का समय जब आता है तो हम ढूंढने लगते बिड़बैग कहाँ है, वो जितने दूर रहे उतना अच्छा है कि ना, ऐसे लगता है कि ये नजदीक कहाँ आ गई, इजीली कैसे मिल गई, आज नहीं मिली तो बहुत अच्छा है, हाँ फेस्टिवल है, लेकिन ऐसे नहीं। कृष्णा कोई व्यक्ति एक बार भी आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो ग्रणन, कृष्ण का नाम लेता है तो कृष्ण उसके लिए आते हैं, कृष्ण अधिक कॉन्शियस है। इसलिए तो आदि पुराण में अर्जुन को कृष्ण क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हे अर्जुन जो व्यक्ति सोकर भी मेरा नाम लेता है, कैसे लेटा हुआ है बेड पर और हाथ में माला रखी है, लेटे लेटे और कम्बल ओढ़ा है उसने रजई के साथ, तो वहां भी लेटकर नाम ले रहा है, तो कृष्ण कहते अर्जुना मैं उसके साथ बैठकर बैठ जाता हूं उसके पास और क्या करता हूं सुनता हूं। कितने कॉन्शियस है कृष्ण। फिर वो नेक्स्ट चीजें कहते हैं कि अर्जुन यदि कोई बैठकर अब मेरे नामों का उच्चारण कर दे तो मैं खड़े हो जाता हूं उसके पास और सुनता हूं। जैसे राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके पास कोई कुटिया नहीं थी जिसके अंदर बैठ के सेफली ना वो जप करे, तो वहां कृष्ण खड़े हो जाते थे उनके पास डंडा लेकर, हाँ कोई शेर वगैरह आते थे तो कृष्ण वहां रहते थे, एक तो चांटिंग भी सुनते थे और डिवोटी को प्रोटेक्शन भी देते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा भी करते थे। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर सिद्ध गोकुल में बैठकर हरि नाम लेते थे, जगन्नाथ टेम्पल में उनका एंट्री नहीं था लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ टेम्पल जाते थे, उनके लिए प्रसाद लेकर कहां पहुंचते थे, हरिदास ठाकुर के पास। तो मतलब कोई व्यक्ति हरि नाम का शेल्टर ग्रहण करता है तो कृष्ण उसकी सेवा में लग जाते हैं अपने षड ऐश्वर्यों के साथ, सिक्स ऑपुलेंस के साथ। प्रभुपाद, प्रभुपाद के पास क्या था, प्रभुपाद के गुरु गुरु भाई थे कृष्णदास बाबाजी महाराज, उनको पूछा कि ऐसी भक्तिविदान स्वामी इतने सफल कैसे रहे, क्या उनका राज क्या है, सीक्रेट क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो उस समय भी दो अपने बड़े बड़े दिग्गज क्वालिफाइड नॉलेजेबल सन्यासियों को लंदन आदि भेजा था, वो कुछ ना करके वापस आ गए, लेकिन एक भक्तिवेदन स्वामी गया और उन्होंने एक अमेजिंग चमत्कार करके वापस आए इतने सारे जगत में कृष्ण भक्ति देकर। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि ये जो भक्तिवेदन स्वामी हैं, जो उनके गुरु भाई है प्रभुपाद, तो वो कहते हैं कि इनके अंदर दो चीजें हैं, एक तो क्या है, सर्वप्रथम अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बिल्कुल दृढ़ है, और दूसरा जैसे प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने एक पोयम लिखी, उसमें वो लिखते हैं नामे खूब धरो कि भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धरो, हम भक्ति वेदांत नाम ये वे सार्थक करो कि हे कृष्णा लोग इन्होंने मेरा नाम तो भक्ति वेदांत रखा है। भक्ति मीन्स फुल ऑफ डिवोशन, वेदांत मीन्स नॉलेज, मुझमें तो ना ज्ञान है ना भक्ति है, हाँ लेकिन हे कृष्णा एक चीज है, क्या आपका ये जो पवित्र नाम है उसके प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा है, उसको मैंने फिक्स अच्छे से पकड़ के रखा है, तो आप क्या करो कि मेरा एक भक्ति वेदांत नाम आप सार्थक करो। तो इस प्रकार से हाँ श्रील प्रभुपाद के लिए वो कहते कि दो चीजें उनके पास थी, इसलिए हाँ कोई जैसे हम सोचते कि मुझे बहुत बड़ा भक्त बनना है, बड़ा डिवोटी बनने का प्रयास नहीं करें, हाँ सिंपल सरल स्पिरिचुअल मास्टर का सर्वेंट बनने का प्रयास करें। इसलिए दो चीजें लाइफ में हो तो वो सबसे पावरफुल डिवोटी कहलाया जा सकता है, एक है गुरु सेवा और दूसरा है नाम सेवा, स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करना और दूसरा कृष्ण को सर्व करना उनके नामों का उच्चारण करके। इसलिए जब हरि नाम हम जप करते हैं तो ये कृष्ण की हम पर्सनल सेवा कर रहे हैं, सामूहिक हम हरि नाम उच्चारण करते हैं तो ये सामूहिक कृष्ण को हम सर्व कर रहे हैं। हाँ तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत हाँ इनके जो गुरु भाई हैं प्रभुपाद के वो कहा करते थे कि यही उनमें एक विशेषता थी। तो ये जो फ्रूट सेलर थे वो हरि नाम का जप करने उच्चारण कर रहे थे फ्रूट्स के बहाने, कृष्ण बाहर आते हैं या फिर तो कृष्ण बाहर आते हैं और उससे कुछ चीजें लेने के लिए। तो यहाँ अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति बैठकर मेरा नाम लेता है तो मैं उसके पास खड़ा हो जाता हूँ, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर नाम लेता है तो हे अर्जुन मैं नाचने लगता हूँ, मैं क्या करने लगता हूँ नाच कर उस नाम को सुनता, और कोई मेरे नाम का उच्चारण करके नाचता है गाता है तो मैं अर्जुन मैं उसका आलिंगन करता हूँ और उसको कहाँ ले जाता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने धाम में। तो इस प्रकार से कृष्णा स्वयं अपने नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हैं। तो ये फ्रूट सेलर जो वह बैठे दिन कृष्णा आ गए, हाथ में क्या लेकर आ गए, लेन देन का व्यवहार उस समय में करेंसी में नहीं होता था, हाँ कुछ ग्रेन्स देते थे उसके बदले में कुछ लेते थे। कृष्णा गेहूं लेकर आ गए और उनके छोटे से हाथ थे, छोटे से बाल कृष्णा उस छोटे छोटे हाथों में जो गेहूं लेके आए तो गेहूं के जो दाने हैं ग्रेन्स वो गिर रहे थे उनके उंगलियों से, वो बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा उस गेहूं के छोटे छोटे दानों ने सोचा कि हम इस महल से बाहर जाएंगे फिर अंदर की लीलाएं कौन देख पाएगा, हमें रुकना होगा अंदर की लीलाओं को देखने के लिए। तो जब उनको वो दे दिया वो थोड़े से ग्रेन्स हाँ तो उस फ्रूट सेलर ने कहा कि मैं आपको सारे फ्रूट्स देने के लिए तैयार हूं लेकिन एक चीज तुम करो, क्या कि आपको मेरे गोद में बैठना होगा और एक बार बोलना होगा अम्मा या मदर या माँ, क्या बोलना होगा मदर हा? या माँ या अम्मा। तो कृष्ण ने सोचा मैं तो एक ही मेरी माता है और वो कौन है यशोदा, यशोदा को पता चले किसी और को भी माँ बोलता है तो मुझे डांटेगी। तो कृष्ण ने पहले देखा कोई सुन तो नहीं रहा है, दूसरी चीज देखी कोई को देख तो नहीं रहा है, तो कृष्णा उसकी गोद में बैठ जाते हैं अम्मा या मदर कह के तुरंत उठ जाते हैं और कहते दे दो अभी फ्रूट्स, हाँ तो सारे फ्रूट्स ऑफर करते कृष्णा। अमेजिंग बीबीटी का पेंटिंग भी आपने देखा होगा, वो सारे फ्रूट्स कृष्णा कैरी करते हैं अंदर जाते हैं महल में तो सारे सबको वो फ्रूट्स बांटते हैं, खत्म ही नहीं हो रहे थे। फिर ये जो फ्रूट सेलर ये लेडी थी ये वापस अपना टोकरा लेकर जाती है, जैसे ही जा रहे थे तो बहुत भारी हो गया, यमुना के किनारे गई भारी हो गए, सोचा उतार के देखती हूँ क्या है, देखा कि इतना सारा हाँ इतने सारे ऑर्नामेंट्स हैं ज्वेल्स हैं, हाँ तो वो सोचती है कि कृष्ण ने मुझे क्या कर दिया है चीट किया है, ये सोच रही वो। हम क्या सोचेंगे, ये राइट है सही है, इतनी सेवा में करता हूँ इसके बदले इतना हो तो होना ही चाहिए, हाँ ये भी कमी है हाँ। लेकिन यहाँ वो फ्रूट सेलर कहती है कि कृष्णा आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझे चीट किया है, वो टोकरी को फेंक देती है यमुना में और वो कहती है कि बस आके कहाँ बैठूंगी नंद महाराज के आंगन के सामने और निरंतर एक ही चीज करूंगी,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अनन्य भावना से हम कृष्ण के नामों का शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण हमारे हो जाते हैं, कृष्ण हमें सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार से शास्त्र हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, कृष्ण का नाम हमें अपना रियल वेल्थ या रियल धन बनाना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा ये जो जीवन है वो सफल हो सकता है। इसी कारण से सारे शास्त्र वेदे रामायणे चैव पुराणे, वेदों में रामायण महाभारत पुराण उपनिषद सबके आदि मध्य और अंत में कृष्ण के नामों का वर्णन किया गया है और वो सार है। इसलिए तो पार्वती देवी ने जब दीक्षा ग्रहण की तो उसको विष्णु सहस्र नाम दीक्षा में मिले थे, तो पार्वती देवी रोज विष्णु सहस्र नामों का जप करती थी। तो जब दीक्षा लेके घर आ गई और पार्वती देवी फिक्स थी कि चीज में जब तक मेरा चांटिंग खत्म नहीं करूंगी तब तक एक सेवा उच्चारण की दूसरी सेवा ग्रहण करने की है, चांटिंग खत्म नहीं करूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। तो शिवजी को घर में देखा, उनके वो प्रभु जी हैं, वो शिवजी भी लॉर्ड शिवा भी चांट करते हैं, क्या नाम चांट करते हैं, राम नाम का। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो भगवान ब्रह्मा चार मुखों से बोल रहे हैं हरि नाम, हरे कृष्ण मंत्र, और शिवजी भी। तो शिवजी ने कहा तुम इस राम नाम का जप करो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गई। हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले कहाँ कनेक्टेड थे, वहां कोई मंत्र मिला है क्या होगा। हाँ, तो यहाँ देखते हैं पार्वती को विष्णु सहस्र नाम मिला था, थोड़ा सा एलिमेंट हो गई, शिवजी ने क्या दिया, राम नाम। फिर जब चैतन्य महाप्रभु एपियर हुए तो देखा कि सारा जगत कृष्ण प्रेम से डूब रहा है, कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है। तो माया देवी पार्वती है, पार्वती सोचते कि अरे सारे डिवोटीज सारे लोग आनंदित हैं, मैं अकेले दुखी हूं, कहां जाओ। तो कहां पहुंची वो, नवद्वीप पहुंचती है। वहां फुलिया ग्राम में हरिदास ठाकुर निवास कर रहे थे गंगा के तट पर। और जब हरिदास ठाकुर के पास जाती है कंटिन्यूअसली तीन दिनों के लिए, और वो देखते कि हरिदास ठाकुर रियली दृढ़ व्रता है, क्या है, उनको कोई हिला नहीं सकता उनके नाम भजन से। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी शेल्टर ग्रहण करना चाहती हूँ, आप मुझे कृष्ण नाम प्रदान कीजिए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है कि माया पार्वती देवी भी कृष्ण नाम या हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए हरिदास ठाकुर के पीछे भाग रही है। हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, उसको दीक्षा के रूप में कौन सा नाम देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरिदास ठाकुर ये कृष्ण नाम प्रदान करते हैं, तब से निरंतर पार्वती देवी भी हरि नाम का उच्चारण करती है शिव जी के साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम बहुत अधिक, हमें सोचना चाहिए भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरे लाइफ में दो चीजें हैं, क्या, एक तो भक्तों का संग और दूसरा कृष्ण का पवित्र नाम। ये दो चीजें अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक हम भक्तों के संग में आते हैं उतना ही हरि नाम हमारे जीवन में बढ़ता रहता है। जितने इसलिए भक्तों का संग, इसलिए जगदानंद पंडित कहते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनी तैयार कौन वस्तुना। मुझे तो दो ही चीजें बस, साधु भक्तों का संग और कृष्ण का नाम, इन दो चीजों से इस भौतिक जगत को पार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भागवतम हमें प्रेरित करता है हरि नाम की शरण ग्रहण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण से सारे जगत को ये उदाहरण दिया कि हरि नाम से, और हरि नाम से, इस नाम से प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इंडिया से क्या ले गए थे अपने साथ, भागवतम और कृष्ण नाम, 200 कॉपीज फर्स्ट कैंटो के ले गए थे और हरे कृष्ण मंत्र। और गार्डन में जाकर एक ही चीज कर रहे थे, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
ये सार है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो आप सबका मैं ऋणी हूँ, आप गंभीरता से श्रवण कर रहे थे और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कृष्ण का गुणगान करने की, ताकि मैं अपनी शुद्धि कर सकूं। हरे कृष्णा।
इस सर्व साक्षी प्रभु की, तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से हमको भगवान के नाम की महिमा के बारे में और भगवान के स्मरण के बारे में बताया। तो भक्तों से निवेदन है कि हम अपना आभार प्रकट करें प्रभु जी के प्रति और बड़े ही प्रेम से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा